आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है। मैं मुंबई से हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रही हूँ। आज हम एक नए टॉपिक को समझेंगे। एक नई टर्म है हमारे राजनीति विज्ञान की, जिसे हम कहते हैं संघवाद। तो ये जो संघवाद है, आपके अध्याय 7 का शीर्षक है। और आज हम जानेंगे कि संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में क्या संघवाद दिया हुआ है, अगर दिया गया है तो इसकी क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करें, उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और पृष्ठ क्रमांक 150 पर आ जाएं। तो संघवाद, एक आम भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बाद में हम इसको इसकी परिभाषाओं को जानेंगे, पर बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर कोई हमसे कहे संघवाद क्या होता है, तो संघवाद एक प्रकार है सरकार का। किसी भी देश में एक सरकार का प्रकार है जहां पर देश के अंदर सरकारों को विभिन्न स्तरों पर बांटा जाता है। विभिन्न स्तर मतलब अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे भारत में है कि एक केंद्र की सरकार होती है, फिर राज्यों की सरकार होती है, और आजकल हमारे देश में स्थानीय सरकारों का भी शुरुआत हो गई है। जो पंचायत और जो नगर निगम होती हैं, वो हमारी स्थानीय सरकार होती हैं। पर मूलभूत रूप से संघवाद में कम से कम दो स्तर की सरकारें होनी चाहिए, जिसको हम केंद्र और राज्य में विभाजित करते हैं। तो संघ का मतलब ही यही है कि जहां पर अलग अलग भाग मिलकर साथ में काम करें, उनमें शक्तियों का आपस में वितरण हो और मिलकर वो एक साझे लक्ष्य की तरफ बढ़े, वही संघवाद है। और भारत में संघवाद की स्थापना हुई है जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ है। तभी से, जब से भारत की बात हुई कि अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तब से ही संघवाद हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में था कि इस तरीके की सरकार हम चाहते हैं। अब हम जब इसका मीनिंग समझ चुके हैं और आगे पढ़े, तो उससे पहले आप अगले पृष्ठ पे आएंगे, 51 पर, तो आपको एक भारत का नक्शा दिखाई देगा। ये 1947 का नक्शा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, इसमें अलग अलग स्थानों के नाम हैं। जम्मू और कश्मीर है, उसके नीचे पंजाब, फिर राजपूताना, फिर संयुक्त प्रांत, चंद्रनगर, बिहार, मध्य प्रांत, दीव दमन, जूनागढ़, ये सब अलग अलग प्रांतों के नाम हैं। ये कब की स्थिति है? 1947 की, आजादी से पहले की ये जो स्थिति है। इस तरीके से हमारे राज्यों का बिखराव था, और क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, तो उन्होंने महज अपनी सुविधा के हिसाब से राज्यों को गठित कर दिया था, जो जहां उनको ठीक लगता था जैसा उन्होंने बना दिया। और कुछ जो राज्य थे या कुछ छोटे छोटे स्टेट थे, वो देसी रियासत भी थे, है ना, जहां पे राजा का कार्य था वहां पे राजा भी थे और मूल हुकूमत वहां पर अंग्रेज ही करते थे। तो ये था 1947 की स्थिति। अब आप उसके जब नीचे आएंगे उस पेज के, तो आपको एक और नक्शा दिखाई देगा। ये हमारे आज के भारत का नक्शा है, और सारे हमारे जो अभी प्रदेश हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर से लेकर आप केरल तक चले जाइए, हमारे किस तरीके से राज्य बटे हुए हैं, इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। इन दोनों मानचित्रों से एक हमें आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से इन राज्यों का गठन हुआ, सीमाओं में कैसे परिवर्तन हुआ, और कुछ जो राज्य थे उनके नाम भी बदले गए। जैसे पहले वो राज्य था मैसूर, मैसूर को अब हम कर्नाटक कहते हैं। पहले राज्य था मद्रास, उसे अब हम तमिलनाडु कहते हैं। तो ये जो मानचित्र है ये हमें बताते हैं कि पिछले 70 वर्षों में किस तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, और यही परिवर्तन संघवाद का अर्थ लेकर हमें समझाते हैं कि संघवाद क्या है और भारत में ये संघवाद किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो आपने अभी दोनों नक्शे देखे, उसे हमें पता चल गया कि भारत में किस तरीके के सीमा परिवर्तन हुए थे। तो आप अब अगले पृष्ठ पर आएंगे जहां पर अब हम जानेंगे संघवाद क्या है। अब हमने मोटे तौर पर हम समझ गए कि संघवाद क्या है, पर इसका भारत से कैसे ताल्लुक है, भारत से क्या संबंध है। तो इसका उदाहरण हम रशिया से शुरू करते हैं, जो अभी का प्रेजेंट रूस है उसको पहले हम सोवियत संघ कहते थे, क्योंकि वो संघ था, वो कई छोटे छोटे प्रदेशों का संघ था, और 1989 से पहले उसमें छोटे छोटे प्रदेश थे और रशिया एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1989 के बाद रशिया का विभाजन हो गया, मतलब जो सोवियत संघ था उसका विभाजन हुआ और अब जाके वो एक देश बन गया है रशिया, उसके सारे पार्ट बिखर गए, मतलब जितने भी उसमें से जो उसके राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अभी विघटन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा ही शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था, मतलब सिर्फ एक ही ऊपर सरकार थी, केंद्रीय सरकार, और वही पूरे प्रदेशों को, पूरे देश को चला रही थी, कोई लोगों को नीचे के जो स्तर है वहां पर पावर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ था, लोगों की भिन्न भाषाएं थी, संस्कृति थी, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही सत्ता का केंद्रीकरण था, आधिपत्य था। तो धीरे धीरे ये जो भी देश उसके अंदर से जो बने हैं, खासकर उज्बेकिस्तान आप देखेंगे, किर्गिस्तान, ये जो आप जब देश के नाम सुनते हैं ये सब पहले सोवियत संघ के ही भाग थे, परंतु अत्यधिक केंद्रीकरण के द्वारा सिर्फ एक ही ऊपर से आदेश चल रहा है, उससे लोगों की जो भावना है वो आहत होती, जो अलग धर्म के होते हैं, अलग भाषाओं के होते हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलती, एक ही संस्था सबको चला रही है। तो ये जो विघटनकारी कार्य जब दमन होने लगता है तो उससे एक देश टूट जाता है, जैसा सोवियत संघ के संघ हुआ। और भी कई उदाहरण है, जैसे युगोस्लाविया है, पाकिस्तान है, इनका भी विभाजन हुआ, इवन कनाडा जो है वहां पर भी मतभेद चलते रहे लेकिन वहां स्थिति संभाल ली गई। भारत में भी एक विभाजन हुआ था, वो 1947 की बात है, लेकिन उसके बाद भारत में आप देखेंगे पूरा भारत एकजुट है, हम में इतनी विभिन्न हमारी संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, अलग अलग, कहते हैं ना भारत के हर कोस्ट पर भाषा बदल जाती है, धर्म है, जातियां हैं, सबकी अलग पहचान है, फिर भी हम 70 साल बाद भी पूरा देश एक है। तो आपको, हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश की, हमारे जो संविधान निर्माता है उनकी ये उपलब्धि है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी संघीय व्यवस्था तो अपनाई, जैसे मैंने रूस के बारे में बताया, चेकोस्लाविया, इन सब में संघीय व्यवस्था थी, लेकिन हमारी जो संघीय व्यवस्था थी वो बहुत ही व्यवहारिक थी, व्यवहारिक कहेंगे उसका मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल थी, बराबर से शक्ति का संतुलन हुआ, सबको आजादी भी मिली और सबके लिए पावर का लिमिटेशन भी किया गया। तो यही कारण है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अत्यंत ही सफल है, क्योंकि जो हमारा देश है हम जानते हैं बहुत विविधताओं से भरा है, और देश के विभिन्न भागों में आप देखेंगे इवन आदिवासी भी निवास करते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, पर इन विविधताओं के बावजूद भी हमारा एक अपना खुद का इतिहास है, हम एक जमीन पर रहते हैं और इसी चीज ने हमें बांधा हुआ है। और यही कारण था कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनका मानना था कि जो भारत में विविधता में एकता है, यही विविधता में एकता इस देश को बांधे रखेगी, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं समानता है कि हम एक जमीन के लोग हैं और हमारा एक इतिहास है, और यही कारण है कि हमारे देश ने संघवाद को अपनाया, क्योंकि एक केंद्र सरकार भी हो जो सबको चलाए और जितने अलग अलग जो संस्कृति हैं उनको राज्यों के रूप में अपने आप को उभारने का मौका भी मिले। तो ये जो संघवाद है इसमें आप कोई बहुत कठोर सिद्धांत नहीं बना सकते, मतलब ये परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। और जो भारत में है शासन का सिद्धांत, शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ले लेता है। हर देश के हिसाब से संघवाद है। जो संघवाद है उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वहां का संघवाद हमारे संघवाद से अलग है। वहां पर भी 50 राज्य हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से अलग है, लेकिन जो संघवाद की मूलभूत जो उसकी अवधारणा होती है, जो उसके विचार होते हैं, उसके थॉट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो संघवाद है उसकी मूल अवधारणा क्या है। अब हम पृष्ठ 154, पेज नंबर 154 पर हैं। तो अब हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक संघवाद का। तो सबसे पहले ये एक संघवाद संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत मतलब जहां पर दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। एक भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की स्तर पर सरकार काम कर रही है। एक तो केंद्र स्तर है और एक राज्यों का स्तर है, जिसको हम प्रांतीय भी कहते हैं। और जो प्रत्येक सरकार है, जो राज्य की है या केंद्र की है, उनके अपने क्षेत्र वो वहां पर फ्री है, जो उनका एरिया दिया गया है, उनको कुछ जो फ्रीडम है, उनकी अपनी खुद की स्वायत्त है, वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। पर कुछ जो भारत है, जैसे यहाँ पर इकहरी नागरिकता है, नहीं हम सब इंडियंस हैं, हमारी कोई अपने राज्य से हमारी पहचान तो है लेकिन हमें हमारे राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। जैसा अमेरिका में वो सिटीजन अमेरिका के भी हैं और अपने राज्यों की भी उनको नागरिकता मिली हुई है। तो इस तरीके के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, और वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन फाइनली हम सब भारतीय हैं। तो जो प्रत्येक स्तर की इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके पास कुछ शक्तियां होती है और शक्तियों के संग उत्तरदायित्व भी होते हैं, और दोनों तरफ अपनी अलग अलग सरकार होती है। एक सरकार केंद्र में होती है, एक सरकार राज्य में होती है। तो जो संघवाद है उसका सबसे बड़ी बात यही है कि पे अलग अलग स्तरों पे सरकार होती है, केंद्र और प्रांत, और ये जो सरकारें हैं इनके अपने पास इनकी कुछ शक्तियां होती हैं और उत्तरदायित्व भी इनके होते हैं। इन सभी जो संघवाद है उसमें एक बात और खास है कि जनरली यहां पर कहा जाता है कि लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च होता है, वो दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत है। अब कैसे पता चलेगा कि राष्ट्र की केंद्रीय सरकार को क्या करना है और राज्य की सरकार को क्या करना है? तो ये हमें कहाँ से प्रेरणा मिलेगी? हमें संविधान से मिलेगी। तो ज्यादातर कहा जाता है कि संघवाद के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है, और ये जो संविधान है वही इनकी शक्तियों को बांटता है। जैसे केंद्रीय मामले होते हैं, जो राष्ट्रीय मामले होते हैं, जैसे देश की रक्षा है या पैसों का जो लेन देन है, आर्थिक मुद्दे हैं, वो सब केंद्र को मिलते हैं, और जो स्थानीय महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो राज्य सरकारों को मिलते हैं। पर हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे कि जितने भी सरकार के अंग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो विवाद चलता ही रहता है। जैसे हमने कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, उसी तरह केंद्र और राज्यों में बहुत ज्यादातर टकराव होता रहता है, इनके इश्यूज चलते ही रहते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी जो हमारा नया टैक्स रिफॉर्म आया, उस पर राज्य और केंद्र में कुछ न कुछ टकराहट चलती ही रहती है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनके टकराव को रोकने के लिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार का क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है कि वो संघ के मामलों को निपटाएगा, है ना। इसी तरह जो न्यायपालिका है उसको केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में जो भी कानूनी सलाह देनी है वो न्यायपालिका ही देती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं मोटे तौर पे कि एक संघ में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो संघवाद है उसमें बहुत से विचारधाराएं होती हैं, संस्कृति होती है, परंतु इसका आधार होता है कि विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम, इन चारों आस्पेक्ट से ही संघवाद चलता है। हमें विश्वास करना पड़ेगा एक दूसरे पर, एक दूसरे को सहयोग देना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और संयम, पेशेंस के संग एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। अब परिवार में भी जब रहते हैं या कक्षा में भी होते हैं तो अलग अलग सब लोगों की अपनी विचारधाराएं, लेकिन हम तभी साथ में रहते हैं, हम अलग नहीं हो जाते हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, परंतु हम एक दूसरे के संग विश्वास से रहते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी देते हैं और कभी कभी एक दूसरे को सुनते भी हैं। तो यही बात हमारे संघवाद की है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों को कुछ अपने विचारधारा उन पर हावी करने की कोशिश करते हैं। कुछ भाषाई समुदाय होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारी भाषा को आप सम्मान दीजिए, इस तरीके की कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं। परंतु भारत में इस तरीके की घटनाओं को रोकने की भी हमारे संविधान ने बहुत अच्छे प्रयास कर रखे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे और 156 पर हैं हम, जहां पर आपको नाइजीरिया का एक उदाहरण दिया है, एक छोटा सा उदाहरण है। देखिए संघवाद कैसे काम करता है, अगर आप एक दूसरे पर विश्वास ना करें तो संघवाद कैसे टूट जाता है। तो ये नाइजीरिया पहले यहाँ पर भी ब्रिटेन का राज था, पर जब ये आजाद हुआ तो इस देश के जो नेता थे उन लोगों ने एक संघ बनाने का निर्णय लिया। अब यहाँ पे जातियां थी तीन मेजर, एक थी एल्बा, दूसरा ईबो, तीसरा हौसा फुलानी। ये तीन जातियां थी, जनजाति बेसिकली। तो इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए, मैं यहाँ पे काम करूंगा, आप यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से तो था। परंतु धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे पर अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए, देश में संघर्ष का माहौल हो गया और फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसी हटकर सैनिक शासन आ गया और पुलिस यहाँ पे नियंत्रण करने लगी। तो कोई भी राज्य था वो उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। तो जो नाइजीरिया में फिर से लोगों को अपनी गलती उनको लगी और उन्होंने गलती सुधारी, फिर 1999 में वहां पर फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। परंतु आज भी मतभेद है और मतभेद कुछ आर्थिक कारणों से भी है, क्योंकि वहां पर जो तेल निकलता है वहां पर, तो वो जो संसाधन है उस पे सब अपना हक जमाना चाहते हैं, उस पे राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए लोगों में एक ही देश के होकर एक दूसरे पर उनको विश्वास नहीं था, सहयोग नहीं किया, इसीलिए वहां का संघवाद में दरार आ गई। तो ये हमने एक छोटे से उदाहरण से जाना कि संघवाद किस तरीके से विश्वास और सहयोग पर काम करता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत की, कि भारतीय संविधान में संघवाद क्या है। तो ये जो देश है हमारा, जब इसका निर्माण हो रहा था आजादी के बाद, और तब से ही जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो जानते थे कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है और इसमें अगर शासन करना है तो शक्तियों का संतुलन करना पड़ेगा, शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा। और अलग अलग विविधता है देश में, भाषाई विविधता है, क्षेत्रीय विविधता, तो इन सबको सम्मान भी देना है, इनको मान्यता भी देनी है। और जो ये विभिन्न क्षेत्र हैं और भाषा भाषी के जो लोग हैं उनकी सहभागिता भी जरूरी है देश को चलाने के लिए। इसीलिए जो हमारी देश की मंशा थी कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना तो है ही, साथ में संघवाद भी स्थापित करना पड़ेगा जहां पर सबको अपना सम्मान हम दे सकें। और जो भी क्षेत्रीय सरकारें हैं वो भी अपना वर्चस्व बना सके, उनकी भी अपनी स्वायत्तता हो। तो पर उससे पहले जो मुस्लिम लीग पार्टी थी आजादी से पहले, उसने कहा नहीं मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दीजिए, किसी ने कहा आप इसको ज्यादा प्रतिनिधित्व दीजिए, इस तरीके चर्चा हुई। परंतु कहा गया कि जो क्षेत्रीय सरकार है उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। पर जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद जो संविधान सभा है उसने इस तरीके की सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता और राज्यों के लिए जो अलग अधिकार है उसके सिद्धांतों पर आधारित हो। और भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि केंद्र और राज्य के बीच के जो भी संबंध हैं वो सहयोग पर आधारित रहेंगे। तो हमने विविधता को तो मान्यता दी, साथ में हमने एकता पर भी बल दिया। विविधता सबकी मेंटेन रहेगी, उसको हम वैल्यू करते हैं, पर फाइनली हम एक ही देश है, हमारी एकता ही हमारा बल है, इसको हमने समझा। तो मिसाल के तौर पर आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। हम कहते हैं जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हिंदी में तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि फेडरेशन और यूनियन जब आप समझें तो मतलब उनका संघ ही होता है, लेकिन यूनियन का मतलब ही यही है कि हम एक साथ एक मिलकर हैं। वो जो ताकत जो हमें उसकी फीलिंग आती है वही उसको थोड़ा सा फेडरेशन से अलग करती है। फेडरेशन में आप अपने कुछ हितों के लिए मिले हैं और आप अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यूनियन एक आपको आभास देती है, एक एकता का जो बल है यूनियन में। यही कारण है कि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने यूनियन शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग किया है। अब हम अगले पृष्ठ पर आएंगे और शक्ति विभाजन। अब हमने पढ़ा कि शक्ति विभाजन जो शक्ति संतुलन है केंद्र और राज्य के बीच में वही आधार है इस संघवाद का। तो भारत में मुख्य रूप से दो सरकारें हैं, एक केंद्रीय सरकार और एक प्रांतीय सरकार। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ मैं तब की बात बता रही हूँ, अब 1992 के बाद से हमारे यहाँ अब स्थानीय सरकारें भी आ गई हैं, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो स्थानीय सरकार का ही उदाहरण है। तो अभी हम बात करें केंद्र और राज्य की। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र और राज्य, और ये दोनों ही संवैधानिक हैं क्योंकि इनको संविधान से ही पावर मिला है, और इनका जो कार्य क्षेत्र है इनकी जो पावर से वो बहुत ही क्लियर लिखी गई है। इनकी जो शक्तियां हैं और कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी इसके बारे में भी संविधान में प्रावधान लिखे गए, और जो संविधान है उसने स्पष्ट किया है कि कौन सी शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास होंगी कौन सी शक्तियां सिर्फ राज्यों के पास होंगी, और ये भी बताया गया कि कुछ शक्तियां दोनों मिलकर भी यूज करेंगे। तो जैसे आर्थिक तौर पर काफी पावर दी गई है केंद्र को, जो वित्तीय शक्तियां हैं, और जो राज्य हैं वैसे उनके पास काम बहुत हैं लेकिन उनको आर्थिक शक्ति नहीं दी गई है, तो एक वो थोड़ा सा उनको एक हानि लगती है कि हमें भी आर्थिक शक्ति मिलनी थी। तो भारत में जो शक्ति का वितरण किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में उसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं, मतलब तीन लिस्ट बनाई गई हैं। तो आप जब अगले पृष्ठ पे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर तीन सूची दी हुई है। पहली है संघ सूची, संघ मतलब संघ सूची का मतलब है जो केंद्र की पावर्स हैं, जो केंद्र के पास शक्तियां हैं, इसमें आप काफी शामिल हैं, रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध शांति, बैंकिंग, रेलवे, ये एक लिस्ट है, इस पे केंद्र निर्णय लेता है। उसके बाद है राज्य सूची जिसमें कृषि, पुलिस, ये सब कुछ लिखा हुआ है, जेल है, भूमि है, इस पर राज्य अपने खुद कानून बनाते हैं, हर राज्य के अपने कानून होते हैं। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जो समवर्ती होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की जो विधायिका है वो अपने अपने कानून बना सकती है। तो ये तीन सूचियां हैं, संघ सूची जहां केंद्र रूल बनाएगा, राज्य सूची इन मुद्दों पर राज्य रूल्स बनाता है, और एक समवर्ती है उस पर दोनों ही मिलकर बना सकते हैं, और कुछ मामला अटकता है तो न्यायपालिका में भी जा सकते हैं। एक बात और कही गई है कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट मतलब कुछ मामले ऐसे हैं या जो नए नए मामले आते रहते हैं जिनको इन सूचियों में नहीं लिखा गया है, उनका वर्णन नहीं है, तो उन पर, उन नए मुद्दों पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। तो ये तीन हमारे मुख्य सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जो अन्य शक्तियां हैं जिसके बारे में प्रावधान नहीं है उस पर केंद्र ही कानून बनाएगा, ये लिखा गया है हमारे संविधान में। अब है कि सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। देखिए, भारत में कहा जाता है कि हमारी जो केंद्र की सरकार होती है बड़ी ही पावरफुल होती है, और इसको हमारे जो संविधान निर्माता उन्होंने एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की जो बहुत ही थोड़ी शक्तिशाली है, क्योंकि इसका कारण ये था कि भारत में अनेक विविधताएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, तो हमें एक ऐसे संघीय संविधान चाहिए था जो इन विविधताओं को समेट सके, और इन विविधताओं को कौन समेट सकता था, एक केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत सी ऐसी विघटनकारी शक्तियां हैं जो देश में अंकुश लगाना चाहती हैं, लोगों में भेदभाव करना चाहती हैं, तो समय के संग एक ऐसे केंद्र की जरूरत थी जो इस देश को एक साथ बांध सके, एक साथ देश को गठित कर सके, और यही सबसे प्रमुख कारण था कि हम एक केंद्र सरकार, जिसके पास, ऐसा नहीं कि केंद्र के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, पर राज्य के हिसाब से जो हमारी केंद्र है, हमारी केंद्र की सरकार हो, वो सशक्त हो, वो सबको एकता में बांध सके, वही सबसे मूल कारण था कि हमें एक सशक्त केंद्र सरकार दी गई। तो देश की एकता बनाए के रखने के साथ साथ जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि जो भी देश में सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान भी एक केंद्रीय सरकार करे, और ऐसा करने से उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। जैसे कई समस्याएं थी, गरीबी थी, आर्थिक असमानता आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका नियोजन जरूरी, जिनके लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से ये जो देश की चिंताएं थी उसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत थी जो सब जगह अपने कानून लागू करके सबको बराबर से अधिकार दे, और जो ये जो हमारी खासकर जो गरीबी और निरक्षरता है उसको हटा सके। तो यही कारण थे कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं को लेकर संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि एक सशक्त केंद्रीय सरकार देश में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कुछ कारण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो केंद्रीय सरकार है उसकी ताकत हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में, आप देख लेंगे कि इसको किस तरीके से पावर को थोड़ा सा केंद्र के पक्ष में दिया गया है। तो देखिए, कोई भी जो राज्य है वो जब अस्तित्व में आता है या उसकी सीमाओं को कुछ चेंज करना है तो उसका संसद पर नियंत्रण है, संसद ही उस राज्य की सीमाओं को चेंज करती है, और एक अनुच्छेद है 3 जिसमें लिखा गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। जैसे पहले उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश था, है ना, वो बहुत बड़ा प्रदेश था, फिर उसका विभाजन करके उसके में से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया। तो ये जो राज्यों के निर्माण हुए हैं ये राज्य ने अपने बल पर नहीं किया, ये संसद का काम है, ये केंद्र का काम है कि जब उन्हें लगता है कि इस तरीके का परिवर्तन जरूरी है तो ये जो पावर है वो केंद्र के पास है। उसके बाद जो भी आपातकालीन स्थितियां देश में आती हैं, आप इमरजेंसी जो भी जब देश में आती है तो पूरा जो संघ है वो केंद्रीकृत हो जाता है। आपातकाल जब देश में लगता है, कोई बाहर से विदेशी हमला हो गया या देश में कोई आर्थिक चुनौती आ गई, तो जो संसद है उसको सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं रहती, और वो सारे विषयों पर अब केंद्र जो है वो कानून बना सकती है। इवन राज्यों की सूची में भी जो मैटर्स हैं वो सारे केंद्र के अंतर्गत आ जाते हैं, कब, जब आपातकालीन स्थिति देश में आती है। अगर नॉर्मल सामान्य स्थिति में भी जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो पैसा है, आय के प्रमुख साधन है, उस पर केंद्र का नियंत्रण है और केंद्र आय के अनेक जो संसाधन है, राज्यों को जो अनुदान मिलने हैं, राज्यों को जो सहायता मिलनी है, वो सब केंद्र पर वो आश्रित है। तो इसके लिए क्योंकि जरूरी था कि देश में प्लानिंग की जाए, सब राज्यों को बराबर से डिविजन हो, इसीलिए जो शक्तियां हैं, जो आर्थिक फैसले हैं, वो केंद्र सरकार को दिए गए, क्योंकि कहां किसको कितना हक मिलना चाहिए, एक ही सरकार सबको उस हिसाब से बांट सकती है। तो जो वित्तीय मामले हैं उसमें केंद्र को उसके अपने विशेषाधिकार हैं, और आर्थिक संसाधनों का ये जो वितरण है, कुछ राज्य कहते हैं असंतुलित है, परंतु कई विरोधी दल होते हैं जो कहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, परंतु ये एक छोटा सा वाद विवाद का इशू है। परंतु देखा जाए तो केंद्र की कोशिश रहती कि सब राज्यों को उनका जो स्तर है उनके हिसाब से आर्थिक संसाधन प्राप्त हों। अगला है कि जो राज्यपाल है राज्यों में, उसकी भी नियुक्ति केंद्र द्वारा ही की जाती है, और उसको राज्यपाल जो है वो सारे राज्य में जो घटना है वो केंद्र को रिपोर्ट भी करता है, और कुछ ऐसी स्थितियां भी आती है जब वो राज्य सरकार को हटा सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, और कभी कभी उसके पास, राज्यपाल के पास ऐसी भी शक्ति है कि अगर कोई विधेयक पारित हुआ है विधानसभा द्वारा तो वो राष्ट्रपति के पास उनको भेज सकते हैं, और इस तरीके से वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको सुरक्षित कर सकते हैं कि अभी मैं राज्य की विधानसभा की बात नहीं मुझे ठीक लग रही है, इस पर मैं राष्ट्रपति का हस्तक्षेप चाहता हूँ। तो इस तरीके का भी पावर, एक तरीके का ये भी वीटो है, निशेषाधिकार है जो राज्यपाल के पास है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र करता है, तो इनडायरेक्टली केंद्र का थोड़ा सा हस्तक्षेप राज्यों में होता है। एक और जो विषय है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब केंद्र राज्य सूची में भी कानून बना सकता है। आपने हमने पढ़ा था जब हम विधायिका की बात कर रहे थे, संसद की बात कर रहे थे, तो हमने जब शक्तियों की बात की थी कि राज्यसभा की क्या शक्ति है, लोकसभा की क्या शक्ति, तो राज्यसभा की शक्ति है कि वो राज्य की सूची में भी बदलाव कर सकती है। तो कभी कभी जो केंद्र है उसको राज्य की सूची में जब उसे लगता है कि आवश्यक है कानून बनाना, तो केंद्र उसमें चेंज कर सकता है, वो निर्देश दे सकता है राज्य सरकारों को। एक और व्यवस्था जहां पर केंद्र का हस्तक्षेप है वो है नौकरशाही। हमने पढ़ा था, फिर से पहले हमने ये बात को पढ़ा था कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो इकहरी है, मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो चुने केंद्र से जाते परंतु उनको राज्यों में भेजा जाता है ना। तो जैसे जिलाधीश होता है, कलेक्टर होता है, वो आईएएस ऑफिसर होता है, और आईपीएस होते हैं जो पुलिस कमिश्नर होता है, तो वो अधिकारी जो होते हैं वो केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। तो राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकता है, ना ही उनको सेवा से हटा सकता है। तो प्रशासनिक सेवा के माध्यम से भी जो केंद्र है वो राज्यों पर नियंत्रण करता है। और आखिरी मामला हम पढ़ेंगे जो है सैनिक शासन का, मार्शल लॉ जिसको कहते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 33 और 34 में दिया गया है। इसके हिसाब से देश में जब भी सैनिक शासन लगेगा, अगर मार्शल लॉ लगेगा, तो सारी जो अधिकार है राज्यों के वो इस संसद को, सरकार ने जो हमारा संविधान है उसने अधिकार दिया है कि ऐसी स्थिति में वो केंद्र राज्य के सभी अधिकारों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, उसकी बहाली के लिए की गए किसी कार्य को कानूनन जायज करार दे सकती है। इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे ये जो व्यवस्था, इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में तनाव भी हो जाता है। तो ये जो सैनिक शासन अगर देश में लग गया, अगर इस तरीके की, कभी हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई, कभी इस तरीके का हमें मंजर नहीं देखना पड़ा, परंतु अगर इस तरीके का होता है मामला सैनिक शासन का, तो सारी जो शक्तियां हैं वो राज्य से छिन जाएंगी। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हमने आज संघवाद को जाना कि जो संघवाद है हमारे देश का, भारत एक संघ है और यहाँ पर संघ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही देश में विभिन्न स्तरों की सरकार है। हमारे देश में दो स्तर की सरकार है, एक ही केंद्र और एक ही राज्य। इन दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। अगर वाद विवाद इन दोनों के बीच में होता है तो न्यायपालिका है जो निर्णय लेती है, खासकर सर्वोच्च न्यायालय, उसके पास पावर है। और इन दोनों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा तीन सूचियों में दिया गया है, तीन लिस्ट है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। पावर्स तो है लेकिन देश में हमारे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार इसीलिए बनाई गई ताकि जो देश में विघटनकारी शक्तियां हैं उन पे अंकुश लगा सके और साथ ही देश में एकता बनी रहे। और जितनी देश में आर्थिक समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं हैं, केंद्र एक साथ मिलकर सबकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो हमने उन प्रावधानों को भी जाना कि जहां पर केंद्र को थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा हैं और खासकर जब केंद्र राज्य सूची में भी कुछ बदलाव कर सकता है, इमरजेंसी जब आपातकाल है तो राज्यों से उनकी पावर छीन जाती है, राज्यपाल जो है उनका जो उनको जो प्रदेश में भेजा जाता है वो केंद्र के ही द्वारा भेजा जाता है, उनके पास पावर्स हैं। और जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, होते वो केंद्र के हैं परंतु राज्य में काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली केंद्र का ही नियंत्रण उन पर रहता है। तो आज के लिए इतना ही है। अब कल हम आगे जानेंगे कि ये व्यवस्था किस तरीके से काम करती है और न्यायपालिका इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप करके वाद विवाद को सुलझाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।